1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर एक ऐसी फिल्म थी जिसने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बना दिया और इस फिल्म ने दिया अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन का खिताब। इस फिल्म के बारे में एक बड़ी मजे की बात है, वो बात यह है कि प्रकाश मेहरा ने ये लीड रोल पहले राजकुमार साहब को ऑफर किया था, पर उन्होंने इस फिल्म में काम करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें प्रकाश मेहरा के सर पे लगे तेल की महक पसंद नहीं थी।
कहानी शुरू कुछ इस तरह से होती है। रंजीत के खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर उसे जेल से छोड़ दिया जाता है। इंस्पेक्टर उसे समझाता है कि वो जिन लोगों के साथ काम कर रहा है उनकी नकली दवाइयाँ लोगों की जानें ले रही हैं। वो इंस्पेक्टर की बातों को नजरअंदाज कर घर चला जाता है। वहाँ अपनी बीवी और बेटे विजय से मिलता है।
उसे देखते ही उसकी बीवी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि उनकी बेटी नकली दवाई खाकर मर गई। रंजीत अपने बॉस पाटिल साहब से मिलने जाता है और उन्हें साफ साफ बता देता है कि वो अब उनके साथ काम नहीं कर सकता। उन लोगों को इस बात का डर होता है कि अगर रंजीत सरकारी गवाह बन जाए तो उन्हें जेल हो सकती है।
दिवाली की रात थी, चारों तरफ पटाखों की गूंज थी। इसी गूंज में तेजा रंजीत और उसकी बीवी को गोली मारकर चला जाता है, पर विजय बच जाता है। गोली मारते वक्त विजय उस खूनी का चेहरा तो नहीं देख पाता, पर उसके ब्रेसलेट पे लटका हुआ घोड़ा देख लेता है। वही इंस्पेक्टर जिसने रंजीत को नकली दवाइयों के बारे में बताया था अपने साथ विजय को ले जाता है और उसकी परवरिश बिल्कुल अपने बेटे अनिल की तरह करता है।
विजय को बार बार एक ही सपना आता है कि कोई घोड़े पे सवार है और वो डर जाता है। वक्त के साथ साथ विजय बड़ा हो जाता है, पर उसका वो सपना उसका पीछा नहीं छोड़ता। अनिल के माता पिता का देहांत हो जाता है, अनिल एक वकील और विजय एक पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं। विजय की नौकरी को 5 साल हो गए हैं, पर इन 5 सालों में उसका 11 बार तबादला हुआ है।
पुलिस सर्विस में आपको 5 बरस हो गए हैं और इन 5 वर्षों में आपके 11 ट्रांसफर हुए हैं। किसी भी पुलिस स्टेशन में आपने 6 महीने से ज्यादा काम नहीं किया। खास वजह?
शायद उन लोगों को मेरे काम करने का तरीका पसंद नहीं आया।
मुझे मालूम हुआ है कि आप एक ईमानदार और मेहनती पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन आप में कमजोरी भी है। आप हर मुजरिम को अपना जाती दुश्मन समझते हैं और कानून की हिफाजत करने के लिए कभी कभी कानून के दायरे से बाहर भी निकल जाते हैं।
एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं जुर्म से हर कीमत पर लड़ना अपना फर्ज समझता हूँ।
ये ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते अगर आपके पास कुछ अख्तियारात हैं तो आप पे कुछ पाबंदियां भी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप यहां उन पाबंदियों को नहीं भूलेंगे। आप कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए।
यस सर।
गाती है माला। ये चाकू छुरिया तेज करने वाली लड़की है। इसके साथ एक दिन एक लड़का बीच सड़क में बदतमीजी करता है तो उसे बड़ा मजा चखाती है, पर तभी विजय वहाँ आ जाता है और उस लड़के को गिरफ्तार कर लेता है।
जब एक चोर जेल से छूटता है, विजय उसे ईमानदारी की जिंदगी जीने की सलाह देता है और अपनी तरफ से 300 रुपए देकर उसकी मदद भी करता है। शेर खान अपने जुए के अड्डे को चलाता है। विजय शेर खान को थाने में बुलवाता है। दोनों में कुछ अनबन हो जाती है। शेर खान विजय को ललकारता है और कहता है कि वो बिना वर्दी के एक बार उसके इलाके में आकर तो देखे।
अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर, हमारा खुशकिस्मती तो तुम्हारे जैसे बड़े ऑफिसर ने हमको याद किया। हमारे लायक कोई खिदमत?
तुम्हारा नाम शेर खान है?
इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। खैर, अब मुलाकात हो गई।
जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।
आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि तुम नहीं तुम्हारी वर्दी तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। जिस दिन ये वर्दी ये कुर्सी नहीं होगी उस दिन तुम
नहीं साहब
गला खराब हो जाएगा। घंटी बजाओ और हवलदार को बुलाओ और कहो कि शेर खां को बंद कर दे।
साहब ये फाइल।
हवलदार शेर खान को बाहर छोड़ दो।
जरूरत नहीं शेर खां खुद आया था खुद चला जाएगा। खुदा हाफिज।
विजय भी शेर खान के इलाके में जाता है और उन दोनों की जबरदस्त लड़ाई होती है पर इस लड़ाई का अंजाम काफी अच्छा होता है। विजय और शेर खान की दोस्ती हो जाती है पर इस शर्त पर कि शेर खान कोई गलत काम नहीं करेगा। पर मजे की बात तो ये है कि शेर खान मान भी लेता है।
सलाम अलैकुम इंस्पेक्टर साहब।
यही है वो इलाका जहाँ लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूं। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूं।
मतलब का बात बोलो साहब। खबरदार तो कोई बीच में आया तो आज जिंदगी में पहली बार शेर खां की शेर से टक्कर हुई है। लाहत
कल सुबह तक तुम्हारे सब जुए खाने और काले धंधे बंद हो जाने चाहिए शेर खान। तब ये हाथ मिलेगा।
शेर खान आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। अभी से सब कुछ बंद। राहत बच्चे दो चाय लाओ।
एक आदमी विजय को फोन करता है और उसे एक गैर कानूनी शराब ले जाने वाली ट्रक के बारे में बताता है और उसका नंबर भी देता है। विजय उस ट्रक को पकड़ता है पर उसका ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है।
उस नकली शराब के गैंग का बॉस कोई और नहीं वही तेजा है जिसने विजय के माँ बाप को मारा था। विजय उनकी पार्टी में जाता है। तेजा की पीएम मोना विजय से बात करने की कोशिश करती है पर विजय मना कर देता है और मोना ये गाना गाती है।
दिल जलों का दिल जला के क्या मिलेगा दिल रुबा। दिल जलों का दिल जला के क्या मिलेगा दिल रुबा। दिल ने मेरे दिल से तेरे दिल ने मेरे दिल से तेरे हाल दिल भर के दिया। दिल जलों का दिल जला के क्या मिलेगा दिल रुबा।
तेजा मोना से विजय के बारे में कहता है कि वो बड़ा ही जिद्दी किस्म का इंसान है और उसे खरीदना मुश्किल है। बातों ही बातों में तेजा पाटिल साहब की तारीफ करता है और मोना के सामने कबूल भी कर लेता है कि उन्हें भी उसने ही मारा था।
वही खबरी फिर विजय को फोन करता है और एक और ट्रक का नंबर देता है। विजय जैसे ही उस ट्रक को पकड़ने की कोशिश करता है वो ट्रक वाला भागने की कोशिश में कुछ स्कूल के बच्चों को कुचलता हुआ चला जाता है पर माला उसे देख लेती है।
माला के घर तेजा के आदमी आते हैं, उसे उसका मुंह बंद रखने के लिए 5,000 रुपए देते हैं। उन बच्चों को विजय हॉस्पिटल में लेकर जाता है पर उन सबकी मौत हो जाती है। वहाँ हवलदार माला को पूछताछ के लिए लेकर आता है। वो कहती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा है। विजय माला को उन सभी बच्चों की लाश के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है जो एक्सीडेंट में मरे थे, जिसे देखकर माला बिल्कुल भौचक्की रह जाती है।
विजय तहकीकात कर ही रहा था कि माला वहां आती है और खूनी को पहचान लेती है। तेजा को जैसे ही पता लगता है कि माला ने अपना मुंह खोल दिया है वो उसके पीछे गुंडे भेज देता है। वो बड़ी ही मुश्किल से उनसे अपना पीछा छुड़ाती है और विजय के पास जा पहुंचती है।
माला बहुत डर जाती है। विजय उसे अपने घर पे रुकने के लिए कहता है। दूसरे दिन माला विजय के लिए चाय बनाकर लाती है। दोनों बात कर ही रहे थे कि बाहर दो बंजारे ये गाना गाते हैं।
बाहर तो कोई भी नहीं। देखो माला, रो मत। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें क्यों, यहां तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
नहीं साहब, वो लोग मेरा जान का दुश्मन बन गया, वो मुझे मार डालेगा।
अरे कैसे मार डालेगा? ये दुनिया में जंगल राज चलता है क्या? जिसका जैसे जी चाहेगा मार डालेगा? पुलिस कानून भी तो कोई चीज होती है कि नहीं? फिर बस चुप हो जाओ। और फिर तुम तो इतनी बहादुर लड़की हो, इतनी जल्दी डर गई। याद है जब मैं पहली बार तुमसे मिला था, कैसे तुमने उस मवाली को पकड़ लिया था? याद है?
फिर वो क्यों मेरे साथ बंकस करता था?
अब तो वो परेशान नहीं करता।
नहीं, उस दिन लाफे पड़े ना, तब से बहन बोलता है हेल्प कर।
अच्छा देखो, आज मेरा फोन ठीक नहीं है, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन से तुम्हारे लिए गाड़ी मंगवा देता। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली जाओ, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता
हूँ। हाँ साहब। जब तक पुलिस उन्हें पकड़ नहीं लेती मैं घर नहीं जाऊंगी। पहले पैसे देने को आए थे मेरे घर, अब फिर से आ गए तो।
लेकिन अगर तुम घर नहीं जाओगी, तुम्हारे घर वाले?
उसका कोई फिक्र नहीं साहब, मेरे घर में कोई नहीं।
कोई तो होगा, माँ बाप?
नहीं साहब, मेरा कोई नहीं, मैं बचपन से अनाथ हूँ। क्या हुआ साहब?
नहीं कुछ नहीं, सोच रहा था इतनी बड़ी दुनिया में अकेले कैसे रहती।
तो क्या हुआ साहब, बहुत से लोग अकेले रहते हैं।
रहते तो हैं, लेकिन तुम तो एक लड़की हो, शादी क्यों नहीं कर लेती?
किससे करूं साहब?
मैं?
साहब मेरा थोपड़ा देखो, मुझसे कौन करेगा शादी?
क्यों, क्या हुआ? अच्छा भला तो है, बहुत से मिल जाएंगे तुमसे शादी करने वाले।
तो कोई नहीं
मिला। गाली नहीं
साहब, हम कहाँ गाली दिया।
देखो अगर तुम घर नहीं जाना चाहती हो तो साथ वाले कमरे में जाके सो जाओ, मैं यहीं सो जाऊंगा।
मैं उधर, तुम इधर। साहब, साहब
क्या है?
चाय।
ओह, अरे इसकी क्या जरूरत थी?
क्यों साहब, सुबह आप चाय नहीं पीते?
पीता हूँ, लेकिन ये ग्लास में।
क्यों साहब, क्या हुआ?
कुछ नहीं।
अरे साहब,
क्या हुआ, चाय तो अच्छी
है। नहीं साहब, वो ग्लास झूठी है, मैंने पी थी भूल से, आपको दे दी।
चलो कोई बात नहीं। शक्कर कितने चम्मच डाली?
पूरी चार, कम है?
नहीं नहीं, बिल्कुल बराबर, जितनी चाय उतनी शक्कर। अच्छा है, एक ग्लास चाय पीकर सारा दिन में मीठा रहेगा।
आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए अपने अरमानों की बेताब कली खिल जाए। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए।
जवानी में जवानी
चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए।
गाने के दौरान विजय और माला आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बातें समझने लगते हैं। विजय माला को अनिल के घर ले जाता है और इसी कोशिश में लगा रहता है कि वो उस गुनहगार को पकड़ सके, पर तेजा यहाँ एक दूसरी चाल चलता है। वो विजय को मरवाने के लिए शेर खान के पास कुछ गुंडे भेजता है, पर शेर खान उन्हें वहाँ से भगा देता है।
तुम्हारा नाम शेर खान है?
वो गाड़ी के नीचे काम करने से शेर गीदड़ बन जाता है क्या? काम बोलो।
किसी का खून करना है
तो इसमें हमारा इजाजत का क्या जरूरत है?
काम तुम्हें करना है, अपनी कीमत बताओ।
पहले मरने वाले की कीमत बताओ।
पुलिस इंस्पेक्टर,
25,000 काम से पहले और 25,000 काम के बाद, मंजूर?
एक इंस्पेक्टर की जान की कीमत 50,000 रुपया। मालूम होता है बड़ा ही ईमानदार इंसान है। नाम?
इंस्पेक्टर विजय खन्ना।
शेर खान शेर का शिकार नहीं करता। वैसे भी हमारे मुल्क में अब शेर बहुत कम रह गया है। हमने सुना है कि हुकूमत ने भी शेर मारने की ममानियत कर दी है।
खान, 50,000 रुपए कम नहीं होते।
तुम लोग बहुत खुश नसीब है कि हमारी छत के नीचे आकर हमको ऐसा बोला। खान अपने घर में आए दुश्मन पर भी हाथ नहीं उठाता। कोई और जगह होता तो 50,000 के हिसाब से तुम तीनों का हम 1.5 लाख रुपया वसूल कर लिया होता। निकल जाओ सतीश के घर।
शेर खान वहाँ विजय को उन गुंडों के बारे में आगाह करता है। विजय माला से कहता है कि अगर उसे जिंदगी में कुछ हो जाए तो वो सिर्फ शेर खान और अनिल भैया पर ही भरोसा करे। वो चोर जिसकी विजय ने कभी मदद की थी पैसे देकर, तेजा उसी को जरिया बनाकर विजय को रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार करवा देता है। अनिल विजय को बचाने के लिए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है।
शेर खान उस चोर को ढूंढ निकालता है और सरकारी गवाह बनाकर ले जा ही रहा था कि तेजा का आदमी उसे चलती हुई ट्रेन से गिरा देता है और वो मर जाता है। इसीलिए शेर खान विजय के लिए जमानत के पैसों का इंतजाम करता है। वहाँ विजय की याद में माला ये गाना गा रही थी।
आखिर वो दिन आ ही जाता है जब विजय जेल से छूट जाता है, पर छूटते ही सबसे पहले तेजा से मिलने जाता है। तेजा और विजय में काफी देर तक बातें चलती हैं। वो एक दूसरे को मिटा देने की धमकी देते हैं।
तेजा विजय के घर पर अपने गुंडे भेजता है, पर विजय उनकी अच्छे से खबर लेता है। विजय अनिल के घर पहुंचकर देखता है कि माला अपने घर वापस जा रही है। उसका कहना है कि विजय के मन में इतना जहर भर गया है कि प्यार के लिए उसके मन में अब जगह ही नहीं बची है।
विजय माला से वादा करता है कि वो उन सारी बातों को भुला देगा और इसलिए वो तेजा से ये कहने के लिए मिलने जाता है कि उसकी अब तेजा से कोई दुश्मनी नहीं रही। विजय और माला एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर ही रहे थे कि तभी उस खबरी का फोन आता है।
वो विजय से मिलना चाहता है। विजय तुरंत उससे मिलने के लिए चला जाता है। वो विजय को बताता है कि उसका नाम डिसिल्वा है, क्योंकि उसी नकली शराब को पीने की वजह से उसके तीनों बेटों की मौत हो गई है और इसीलिए वो उन सभी लोगों को सजा दिलवाना चाहता है।
विजय डिसिल्वा की बातें सुनकर इतना खो जाता है कि वो माला को गुस्से में बहुत कुछ सुना देता है।
जब जब तुम अपना घर बनाओगे तो मैं उसमें ऐसे ही पर्दे लगाऊंगी। देखो देखो ना।
देखा, हम अपने घर में ऐसे ही खूबसूरत पर्दे लगवाएंगे और मैं ये जानने की कोशिश भी नहीं करूंगा कि इन पर्दों की दूसरी तरफ दुनिया में क्या हो रहा है। बाहर, हमारे खूबसूरत घर के बाहर लोग मरते हैं तो मरते रहें, स्मगलरों की गाड़ियां मासूम बच्चे कुचलती रहें, मुझे इन सब से क्या मतलब। मैं वादा करता हूं माला, अगर उनकी चीखें मेरे कानों तक पहुंची तो मैं अपने कान बंद कर लूंगा, तुम्हारे बालों में अपना चेहरा छुपा लूंगा, मैं तुम्हारी खूबसूरत आंखों में झांकूंगा और यह कभी याद नहीं करूंगा कि एक बूढ़ा अपनी पथराई आंखें खोले हर सड़क हर मोड़ पर अपने बेटों के कातिल को ढूंढ रहा है। हां माला, हम जरूर एक खूबसूरत घर बनाएंगे और हम भूल जाएंगे कि ये घर जिस दुनिया में बना है वो कितनी बदसूरत है, वहां कितने जुल्म है, कितनी बेइंसाफी है, हम ये सब भूल जाएंगे। यही चाहती हो ना तुम? यही होगा माला, यही होगा।
माला मदद मांगने के लिए शेर खान के पास जाती है। शेर खान विजय को अपने पास बुलाने के लिए अपने जन्मदिन का बहाना बनाता है। विजय शेर खान के पास पहुंचता है और शेर खान उसे ये गाना सुनाता है।
तुमने अपनी सालगिरह के बारे में हमें नहीं बताया, जल्दी में मैं कोई तोहफा भी नहीं ला सका।
तोहफा? शेर खान को जिंदगी में जो तोहफा चाहिए था वो उसे मिल चुका है। अब तो परवरदिगार भी हमसे पूछे कि खान तुमको क्या चाहिए, तो हमारा बस एक ही जवाब होगा। क्या? वैसे नहीं बताएगा, आज हमारा सालगिरह है, पहले तुम बैठो, बैठो। अरे भी थोड़ा जगह करो, जगह करो, बैठो। अब हम तुमको समझाते हैं।
अगर खुदा मुझसे कहे, अगर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ऐ बंदे मेरे, मैं ये मांगू महफिलों के दौर यूं चलते रहे, हम प्याला हमने वाला हम सफर हम राज हो, ता कयामत जो चिरागों की तरह जलते रहे।
दावत खत्म होते ही विजय अपने घर की ओर जा रहा था कि तेजा के गुंडे उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और उसे बुरी तरह मारते हैं। विजय को उठाकर वो पुल के ऊपर से नीचे रेल लाइन पर फेंक देते हैं। शेर खान विजय के पास पहुंचता है और उसे बचा लेता है।
शेर खान अपना खून देकर विजय की जान बचाता है। माला विजय से अपनी कसम वापस लेती है और उसे अपना बदला पूरा करने को कहती है।
मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर भी एक ज्वालामुखी है, जब तक वो फटेगा नहीं, लावा बहेगा नहीं, वहां मीठे पानी की झील नहीं बन सकती।
माला,
विजय, एक दिन मैंने ही तुम्हें रोका था और आज मैं तुमसे विनती करती हूँ, जाकर उनसे अपना बदला लो जिन्होंने तुम्हारी यह हालत बना दी है, जिनकी वजह से आज तुम दिली दिल में खट रहे हो।
माला, तुम?
मैं वादा करती हूँ विजय, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो।
मुझे कुछ नहीं होगा माला, जाने से पहले मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ जो लाखों करोड़ों बार दोहराई जा चुकी है,
लेकिन मैंने तुमसे कभी नहीं कहा आई लव यू।
विजय डिसिल्वा के साथ उस नकली दारू के अड्डे पर जाता है। विजय तेजा के आदमियों को पुलिस से पकड़वाता है। विजय और शेर खान मोना का पीछा करते हैं और तेजा के पास जा पहुंचते हैं। वहां विजय तेजा के सामने जाता है और उससे उन सभी लोगों की मौत का हिसाब मांगता है जिनकी मौत उसकी नकली शराब और दवाइयों की वजह से हुई है।
तेजा विजय के लिए जाम बनाता है। वो जैसे ही हाथ उठाता है विजय उसके उस ब्रेसलेट को देखता है जिस ब्रेसलेट को उसने बचपन से आज तक देखा है। उस ब्रेसलेट से भी एक घोड़ा लटक रहा है।
हेलो मिस्टर धर्मदया तेजा। हेलो विजय। खेल खत्म हो गया, तुम हार गए।
मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानता विजय। वैसे बहुत अच्छा किया जो तुम खुद चले आए।
तेजा आज मैं तुम्हें ये बोतल वापस करने आया। इस बोतल की जहरीली शराब ने बूढ़े डिसिल्वा से उसके तीन जवान बेटे छीन लिए।
आई एम सो सॉरी। लेकिन विजय हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि यहां हर घड़ी कई इंसान पैदा होते हैं और कई मरते हैं। अब तुम ही बताओ कि मैं कहां तक लोगों के मरने जीने का हिसाब रखूं।
लेकिन तेजा ये जहर तुमने उन्हें पिलाया था।
हो सकता है कि मैंने उन्हें जहर पिलाया लेकिन मैं खुद स्कॉच पीता हूं और वही तुम्हें भी पिलाऊंगा। मरने से पहले हमारे हाथ से एक पैग पी लो।
विजय को सब कुछ याद आ जाता है। उसे ये पता चलता है कि तेजा ने ही उसके माँ और बाप को मारा था।
तेजा! क्या हुआ?
आज से 20 साल पहले तुमने एक आदमी और उसकी बीवी का खून किया था तेजा।
विजय मैंने अपनी जिंदगी में कई खून किए हैं।
ये लो। उस आदमी का नाम रंजीत था।
रंजीत? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम?
तुमने उस दिन 2 खून किए थे तेजा। गलती की, 3 करने चाहिए थे।
क्या मतलब?
समझाता हूं, वो तीसरा मैं हूं, रंजीत और सुमित्रा का बेटा। 20 साल से ये जंजीर मेरे जहन को एक सांप की तरह डस रही थी लेकिन अब मुझे सब कुछ याद आ गया है तेजा। तुम्हारे हाथ में पिस्तौल, मेरे बाप का जख्मी सीना, गोली खाकर गिरती हुई मेरी मां, सब कुछ याद आ गया है तेजा। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
तेजा,
उस रात तुम्हारे हाथ में पिस्तौल थी, आज मेरे हाथ में है। वो भी दिवाली की रात थी और आज भी है। कमीने, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। अगर तुझ में हिम्मत है ले, चले।
तेजा और विजय में अच्छी खासी लड़ाई होती है। यहाँ तेजा के आदमियों के साथ शेरखान की लड़ाई होती है और उसी लड़ाई में शेरखान उस आदमी को पहचान लेता है जिसकी वजह से वो चोर जो गवाह बना था मर गया था।
2 गुंडे शेरखान को पकड़ लेते हैं और वो अपने को छुड़ा नहीं पाता। तभी माला वहाँ आती है, अपने चाकुओं से ऐसा निशाना लगाती है कि दोनों गुंडे घायल हो जाते हैं। और अंत में वही होता है जो हर बार होता आया है। पुलिस आती है और सबको गिरफ्तार कर लेती है,
पर तेजा उस सीनियर इंस्पेक्टर को गोली मारने की धमकी देकर भागने की आखिरी कोशिश करता है, पर विजय मौका पाकर तेजा पर गोली चला देता है और तेजा मर जाता है।
और इस तरह से विजय का इंतकाम पूरा होता है।
यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी,